At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Hey there, you're listening to The Quint.
आज के पॉडकास्ट की शुरुआत मैं सोच रही हूं क्यों ना खुद ही गाना गा के कर लूं, क्या ख्याल है? गाई देती हूं। रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले।
आशा भोसले की आवाज़ में एक गाना जो कि मेरी आवाज़ में इस वक्त आपने सुना है, आर डी बर्मन की म्यूज़िक है और गुलजार साहब के लिरिक्स हैं। पिछले एपिसोड में मैं आपसे कह रही थी ना कि हमारी ज़िंदगी का अलग ही साउंड ट्रैक होता है। अब मैं अपनी ज़िंदगी की अगर बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी का साउंड ट्रैक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गाने आर डी बर्मन के हैं जिन्हें गुलजार साहब ने लिखा है। आज हम बात करने वाले हैं राहुल देव बर्मन की, जिन्हें प्यार से कहते हैं पंचम। उर्दू नामा में पंचम दा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गुलजार साहब के जिगरी दोस्त थे। नहीं, जिगरी दोस्त नहीं कहना चाहिए, गुलजार साहब के बायां हाथ थे। नहीं, वो भी कहना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली गुलजार साहब ने खुद ही कहा था कि वो थे तो दो लोग पर बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करते थे। दो जिस्म एक जान, इतनी गहरी दोस्ती थी पंचम दा और गुलजार साहब की। जब दोस्ती गुलजार जैसे पोएट से हो तो सोचिए हिंदी सिनेमा की म्यूजिक में कितने नायाब हीरे बने होंगे। बस पोएट्री और पंचम और उन हीरो की बात आज करेंगे उर्दू नामा में। द क्विंट और क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूं फबीहा सैयद। बात हुई है पंचम की तो पहले उनका एक गाना सुनाऊंगी आपको मैं, गुलजार साहब ने लिखा है और फिल्म का नाम है मासूम, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।
जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं।
गुलजार साहब और पंचम, ये कैसी जोड़ी है जिसने ख्वाब जैसे गाने दिए हैं? ये ऐसे गाने हैं जो आपके ख्वाबों को सजाते हैं या यूं कहें कि जिंदगी को ख्वाब जैसे खूबसूरत बनाते हैं। पंचम जब चले गए तो गुलजार साहब ने उनके लिए एक नज्म लिखी थी। वो नज्म क्या थी आपको पॉडकास्ट के आखिर में सुनाऊंगी, लेकिन पॉडकास्ट के शुरुआत में बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पंचम को उनकी पहली फिल्म कितनी मुश्किलों से मिली, उनका स्टाइल ऑफ म्यूजिक कितना डिफरेंट था, वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस किस तरह से था, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी गुलजार साहब और आर डी बर्मन की जो पार्टनरशिप थी उसकी तरफ एक नज़र डालेंगे। एक नज़र कह रही हूँ क्योंकि अगर डिटेल में बात करने बैठ गई, एक एक किस्सा बताने बैठ गई ना तो रात हो जाएगी, पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा। तो एक नज़र डालेंगे। गुलजार साहब की मुलाकात हुई थी आर डी बर्मन से ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बंदनी। बंदनी एक ऐसी फिल्म थी जिसका म्यूजिक आर डी बर्मन के फादर एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन ने दिया था। लेकिन पहली फिल्म जिसमें गुलजार साहब ने आर डी के साथ काम किया है, उस फिल्म का नाम है परिचय। 1972 में फिल्म बनी थी, साउंड ऑफ म्यूजिक से काफी इंस्पायर्ड थी और उसका गाना आपको याद होगा, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। इस फिल्म का एक एक गाना मुझे बहुत पसंद है। गाएंगे गाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि इस फिल्म का जो पहला गाना दोनों ने मिलकर बनाया था, जिस पे काम किया था, वो ये गाना नहीं था। ये तो मैंने ऐसे ही गा दिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरा दिल भी चाह रहा था। लेकिन जो गाना आर डी बर्मन और गुलजार साहब ने मिलकर बनाया था वो था मुसाफिर हूँ यारो। दरअसल गुलजार साहब ने पंचम को इस गाने की दो लाइनें बता दी थी, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। तो बताया जाता है कि पंचम और गुलजार साहब एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे गाड़ी के बॉनेट पर। पंचम इसकी धुन बजा रहे थे एंड फाइनली सुबह तक ड्राइव करते रहे और ये गाना डन किया। अब ये गाना आप सुनिए द क्विंट के सुपर सिंगर वैभव पलनीटकर से। ही सो स्वीट। जब भी मैं कहती हूँ ना वैभव गाना गा दो, फौरन रिकॉर्ड करके भेज देता है। सुनिए।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना।
हिंदी फिल्मों में पार्टनरशिप्स बहुत चलती हैं। म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स की जोड़ी की अगर बात करें तो आशा भोसले के साथ ओपी नैयर, मुकेश के साथ शंकर जयकिशन और इस तरह के और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन कुछ पार्टनरशिप्स हीरोज और कंपोजर्स के बीच भी चलती थीं, जैसे कि देव साहब देवानंद अगर किसी फिल्म में हैं तो उसकी म्यूजिक एस डी बर्मन ही देंगे, फिल्म लाइक मुनीम जी, पेइंग गेस्ट वगैरह। तो एस डी बर्मन का म्यूजिक है, हीरो हैं देव साहब। पता है इन फिल्म में एक और कॉमन बात क्या थी? नासिर हुसैन, आमिर खान के ताया, जिनकी बदौलत पंचम दा को, आर डी बर्मन को उनकी पहली फिल्म मिली थी। बड़े मजे का किस्सा है, गौर से सुनिएगा। ओके, बात है 1966 की, जब नासिर हुसैन ने देवानंद को लेकर एक और फिल्म बनाने की सोची। ऑब्वियसली देवानंद होंगे तो म्यूजिक एस डी बर्मन ही देंगे। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद इसके डायरेक्टर थे और नासिर हुसैन प्रोड्यूसर। हुआ यूं कि एस डी बर्मन उन दिनों हो गए काफी बीमार। नासिर हुसैन की परेशानियां काफी बढ़ गईं कि देव साहब तो बिना एस डी बर्मन की म्यूजिक के हरगिज तैयार नहीं होंगे, क्या किया जाए। तो मजरू सुल्तानपुरी उस जमाने के एक बहुत बड़े मशहूर पोएट हुआ करते थे, फिल्मों के लिए गाने लिखते थे। उन्होंने नासिर हुसैन को ये मशवरा दिया कि आप बड़े बर्मन साहब के बेटे से बात कर लें, क्योंकि एस डी बर्मन तो खुद बीमार हैं, उनका बेटा भी काफी अच्छा काम करता है। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि देवानंद के साथ नासिर हुसैन की बात बिगड़ती चली गई कुछ दूसरी वजह से। कोई कहता है तीसरी मंजिल की डेट्स देवानंद की अपनी फिल्म गाइड के साथ क्लैश कर रही थी, तो कोई कहता है नासिर हुसैन और देव साहब के बीच हाथापाई होने की वजह से देव साहब ने तीसरी मंजिल नहीं की। तो यही हुआ कि देव साहब ने एग्जिट ले ली फिल्म से और एंट्री हुई शम्मी कपूर की। अब उस जमाने में शम्मी कपूर या तो म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर के साथ फिल्में करना पसंद करते थे या फिर शंकर जयकिशन के साथ। अब वो कहां एक न्यू कमर को गर्दाने। तो कहा जाता है कि जब शम्मी कपूर तीसरी मंजिल के लिए साइन कर लिए गए तो उनके हाथ पैर जोड़े गए कि प्लीज आर डी बर्मन को मौका दीजिए, नया लड़का है, एस डी बर्मन साहब का बेटा है, अच्छा काम करता है। तो शम्मी कपूर बड़ी मुश्किल से माने, उन्होंने कहा ओके ऑडिशन कर लेते हैं। आर डी बर्मन का ऑडिशन शम्मी कपूर ने लिया। अनिरुद्ध भट्टाचार्य और बालाजी विठल की किताब है आर डी बर्मन द मैन द म्यूजिक, उसमें पूरा किस्सा डिटेल में लिखा हुआ है कि जब आर डी बर्मन ने शम्मी कपूर को ऑडिशन दिया तो नर्वस होते हुए एक नेपाली सॉन्ग की धुन गुनगुनाई, ना 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 ना। यस, गाना आप समझ गए हैं लेकिन धुन नेपाली थी। तो पंचम दा ये धुन गुनगुना ही रहे थे कि शम्मी कपूर ने वहीं उन्हें बीच में टोका और वो जो नेपाली गाना था खुद गा दिया, पूरा का पूरा गा दिया। मुझे आता नहीं इसलिए मैं गा नहीं सकती, लेकिन ये गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी। ओके, तो काफी नर्वस और घबराए हुए पंचम दा फिर एक छोटे से ब्रेक पे चले गए। सिगरेट के एक दो कश लगाकर जब वापस आए तो शम्मी कपूर को तीन धुनें सुनाई उन्होंने। पहली धुन ना 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 ना, दूसरी धुन ना 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 ना, और आखिरी धुन ये वाली ना 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 ना। यस, तो ये धुन सुनाने के बाद शम्मी जी फट से बोले तुम पास हो गए हो, यू आर माय म्यूजिक डायरेक्टर। एंड देन वो आइकॉनिक सॉन्ग शम्मी कपूर के बेस्ट सॉन्ग्स में गिना जाने लगा, जिसकी धुन आपको सुनाई थी और गाना था ये, दीवाना मुझसा नहीं
इस अंबर के नीचे दीवाना मुझ सा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, पाया है दुश्मन को जब से प्यार के काबिल, तब से ये आलम है रस्ता याद न मंजिल, नींद में जैसे चलता है कोई चलना यूं ही, आंखें मीचे दीवाना मुझ सा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
I love this song. आर्टिस्ट सोने की तरह तभी चमकता है जब वो हर तरफ से अच्छे आर्ट से एक्सपोज्ड हो। पंजम दा ने अपने फॉर्मेटिव इयर्स में, या यूं कहें कि जब उन्होंने म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया था, तो बॉसनोवा म्यूजिक को खूब सुना। ये एक ऐसी म्यूजिक फॉर्म है जिसमें क्लासिकल गिटार होता है जो जैज बेस्ड पैटर्न में प्ले किया जाता है। ब्राजीलियन सांबा से काफी इंस्पायर्ड है। फ्रैंक सिनात्रा को अगर आप सुनते हैं, उनका म्यूजिक पसंद करते हैं, तो वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो पंचम ने पति पत्नी नाम की एक फिल्म के लिए गाना इसी तर्ज पे कंपोज किया, जिसे आशा भोसले ने गाया था और शशिकला पे एक हॉट नंबर पिक्चराइज था। गाने के बोल थे, मार डालेगा दर्द जिगर। ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं गा नहीं पाऊंगी, बट यू गॉट द आइडिया। खैर, इसी तरह के जैजी पैटर्न्स पंचम के गानों में मिलते हैं। उस वक्त पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वर वेरी न्यू फॉर हिंदी सिनेमा, और सिनेमा वो जगह है जहां हर जबान की बड़ी इज्जत की जाती है, जबान यानी आर्ट। जैसे गुलजार साहब ने फिल्मों को एक नई जबान दी जो उनके चाहने वालों के नजदीक काफी सीक्रेट है। गुलजार साहब की न जाने कितनी नज़में और गज़लें ऐसी हैं जिन्हें धुन बनाकर पंचम ने अमर कर दिया है, और पंचम को अमर किया गुलजार साहब ने अपनी इस नज़्म में, जब वो 4 जनवरी 1994 को इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके जाने के बाद जिस खला में गुलजार साहब खुद को पाते होंगे, वहां बैठकर उन्होंने पंचम की याद में ये नज़्म लिखी थी। याद है पंचम, वो प्यास नहीं थी जब तुम म्यूजिक उंडेल रहे थे जिंदगी में, और हम सब ओख बढ़ाकर मांग रहे थे, प्यास अब लगी है जब कतरा कतरा तुम्हारी आवाज का जमा कर रहा हूं। क्या तुम्हें पता था पंचम कि तुम चुप हो जाओगे और तुम्हारी आवाज ढूंढता फिरूंगा। याद है पंचम, जब भी कोई धुन बनाकर भेजते थे तो साथ कह दिया करते थे, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ये कौन सा बॉल मेरी कोर्ट में छोड़ गए हो तुम पंचम। जिंदगी का खेल अकेले नहीं खेला जाता, हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो। पंचम की प्यारी सी याद के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते मिलूंगी।